पिछले अध्याय में आपने देखा कि रूही रुद्र से शादी करने से इनकार करती है, लेकिन रुद्र उसे जबरदस्ती शादी के लिए मंडप में ले जाता है। इस अध्याय में रुद्र रूही को मंगलसूत्र पहनाता है और उसकी मांग में सिंदूर भरता है। रूही रुद्र से शादी का विरोध करती है। दिशा रूही को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र उसे जाने नहीं देता। रुद्र रूही को गोद में उठाकर मंडप से चला जाता है और दिशा को घर जाने के लिए कहता है। दिशा और देवांश के बीच बातचीत होती है। रुद्र रूही को कमरे में ले जाता है और शादी के बाद उसे देखता है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 62। अब आगे। रू, क्या मैं इस चेरी को खा लूं? रुद्र की बात सुनकर रूही को कुछ समझ में नहीं आता कि वे क्या कहना चाहता है, इसलिए रूही रुद्र के हाथों को अपने होठों से हटाकर बोली, आपको जो करना है आप वे करिए, लेकिन मुझसे दूर रहिए, मेरे करीब मत आइए। मैं आपको कभी भी अपना पति नहीं मानूंगी, ना ही इस जबरदस्ती की शादी को। रूही ने इतना बोला ही था कि रुद्र बिना वक्त गवाए रूही के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। वही रूही जो रो रही थी, रुद्र के होठ अपने होठों पर महसूस कर वे बिल्कुल सुन हो जाती है। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक ही पल में उसके साथ क्या हो गया था। वे कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी, यहां तक कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसे सांस ही नहीं आएगी। वही रुद्र जो पूरी शिद्दत से रूही को किस कर रहा था, जब उसे महसूस होता है कि उसकी इनोसेंट रूह सांस ही नहीं ले रही है, तो वे रुक जाता है और रूही से दूर हो रूही को देखने लगता है। रूही का रिएक्शन देख वे हल्का मुस्कुराता है और रूही को देख बोला, रू सांस लो। रुद्र के बोलते ही रूही होश में आती है और जब उसे महसूस होता है कि उसने सच में अपनी सांस रोक कर रखती हुई है, तो वे तुरंत अपनी सांस छोड़ लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। रूही अपनी सांसों को लेने में बिजी थी, पर इस बात के अनजान कि उसका इस तरीके से सांस लेना रुद्र के ऊपर क्या असर कर रहा है, क्योंकि रूही जब लंबी लंबी सांसें ले रही थी तो उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था और रुद्र के बिल्कुल करीब होने की वजह से वे बार बार रुद्र के मजबूत सीने से टकरा रहा था, जिस वजह से रुद्र को अपना शरीर गर्म होता हुआ महसूस हो रहा था और वे अपनी गहरी नज़रों से रूही के सीने की तरफ देख रहा था, जो उसे खुद पर कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रहे थे। वही रूही कुछ देर में अपने सांसों को कंट्रोल कर रुद्र को देख गुस्से में कहती हैं, ये क्या बदतमीजी है, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मर्जी के बिना मेरे होठों पर किस करने की। रूही की बात सुनकर रुद्र दोबारा रूही के होठों को सहलाते हुए बोला, माई इनोसेंट रू, अब मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को किस नहीं करूंगा, उसे प्यार नहीं करूंगा, तो तुम ही बताओ मैं किसे प्यार करने जाऊं। रुद्र की बात सुनकर रूही गुस्से में बोली, आपको जिसको भी किस करना है आप उसको किस करिए, मगर मुझसे दूर रहिए, मेरे करीब मत आइए। इतना बोल वे रुद्र को तेजी से धक्का दे जाने लगती है, जिसके रुद्र दो कदम पीछे हट जाता है, मगर रूही को अपने से दूर जाता देख वे वापस रूही का हाथ पकड़ उसे दोबारा दीवार से लगा गुस्से में बिना रूही को सोचने का मौका दिए दोबारा उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है, जिसे देख रूही रुद्र को खुद से दूर धक्का देने लगती है। मगर कहाँ वे नाजुक सी लड़की और कहाँ रुद्र जैसा हट्टा कट्टा मस्कुलर बॉडी वाला आदमी, जिसे हटा पाना तो क्या, हिला पाना भी रूही के लिए काफी मुश्किल था। वही रुद्र कुछ देर यूं ही रूही को किस करने के बाद अपनी जीभ रूही के मुंह के अंदर डालने की कोशिश करने लगता है, जिसे देख रूही अपने मुंह को तेजी से बंद कर लेती है, जिसके रुद्र रूही के मुंह के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था। जिसे देख रुद्र को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वे रूही की कमर को पकड़ उसे तेजी से प्रेस करता है, जिसके रूही की ना चाहते हुए भी एक चीख निकल जाती है, जिसका फायदा उठा रुद्र तुरंत रूही के मुंह में एंटर हो जाता है और रूही के पूरे मुंह को अपनी जीभ से एक्सप्लोर करने लगता है। कुछ देर यूं ही एक्सप्लोर करने के बाद रुद्र रूही की जीभ को अपनी जीभ में उलझा उसे डीपली किस करने लगता है, जिसे महसूस कर रूही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि रुद्र जिस तरह से उसके करीब है और जिस तरह से उसके साथ ये सब कर रहा है, वे सब आज से पहले कभी महसूस नहीं किया, ना ही किसी को इस तरह करते हुए देखा। रुद्र जिस तरह पैशनेट होकर उसे किस कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि अगर अब रुद्र ने उसे नहीं छोड़ा तो सच में उसकी जान निकल जाएगी। वहीं रुद्र को भी जब महसूस होता है कि उसकी इनोसेंट रू को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वे भी रूही के होठों को आखिरी बार किस कर उसे स्मूच कर छोड़ देता है और उसके गर्दन पर पूरी शिद्दत से किस करने लगता है। वहीं रूही रुद्र से छूटते ही फिर से लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसे अब सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है और इसी के साथ उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वहीं रुद्र जो पूरी शिद्दत से रूही को प्यार कर रहा था, जब उसे महसूस होता है कि रूही कोई भी हलचल नहीं कर रही है, तो वे अपना चेहरा उठा रूही की तरफ देखता है और रूही को बेहोश देख उसके चेहरे पर गहरी स्माइल आ जाती है और वे रूही को देखते हुए बोला, माई इनोसेंट रू, तुम सच में काफी कमजोर और इनोसेंट हो। अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम अभी से बेहोश हो गई। अगर मैं सच में तुम्हारे साथ कुछ करता तो तुम्हारा क्या हाल होता, माई इनोसेंट रू। इतना बोल वे अपने चेहरे पर गहरी स्माइल लिए ही रूही को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा उसे बिस्तर पर लेटा देता है। वहीं दूसरी तरफ देवांश की कार अनाथ आश्रम पहुंचती है, जिसे देख दिशा तुरंत कार से उतर अंदर जाने लगती है, जिसे देख देवांश भी कार से उतर दिशा को रोकते हुए बोला, मिस दिशा। देवांश की आवाज सुन दिशा रुक जाती है और देवांश की ओर सवालिया नजरों से देखने लगती है। वहीं देवांश जब दिशा को खुद की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पाता है तो भी दिशा को देख बोला, देखिए मिस दिशा, मैं मानता हूँ कि भाई ने जो कुछ भी रूही के साथ किया और जिस तरीके से किया वे सब गलत है, पर मैं आपको इतना जरूर यकीन से कह सकता हूँ कि रूही भाई के साथ बहुत खुश रहेगी, इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए। दिशा की बात सुनकर दिशा बोली, सर अब मैं आपके भाई के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती, और आप नहीं समझेंगे कि जब कोई लड़का किसी लड़की से जबरदस्ती शादी करता है तो उस लड़की को कैसा महसूस होता है, उसे कितनी तकलीफ होती है, पर मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि मैं रूही को ज्यादा दिन तक आपके भाई के पास नहीं रहने दूंगी। बहुत जल्द मैं रूही को आपके उस भाई की कैद से आजाद करा उसे बहुत दूर लेकर चली जाऊंगी, जहाँ पर आप क्या आपके भाई भी नहीं पहुँच सकते।
इतना बोल वे बिना देवांश के आगे की बात सुने गुस्से में अनाथ आश्रम के अंदर चली जाती है। वहीं देवांश दिशा की बात सुनकर गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेता है।